فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں سے. اب یہ کیا کرتے تھے یہود کے علماء, جیسے پہلے بات ہوئی کہ اللہ کی کتاب کے اندر چینجز کر دیتے تھے, خود ہی اپنے ہاتھوں سے کوئی چیزیں ایڈ کر دیں, کچھ لکھ لیں, کچھ کر دیں. اور کیا کہتے تھے, ثم یقولون ھذا من عند اللہ, پھر کیا کہتے تھے, یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے. بعض اس سے مراد یہ بھی لیتے ہیں کہ ایسے فتوے لکھ دیتے تھے, ایسے باتیں لکھ دیتے تھے, یا کتاب میں ایسی تحریف کر دیتے تھے اور کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے. کیوں ایسے کرتے تھے, کیا ملتا تھا ان کو اس طرح سے, لیشترو بہ ثمنا قلیلا, تاکہ وہ اس کے بدلے تھوڑی قیمت لے لیں. اگر کوئی امیر بندہ آیا, اب اس کو سے کچھ جرم ہو گیا ہے, کوئی گناہ ہو گیا ہے, اب اس کی سزا تو بڑی سخت ہے کتاب میں, تو سزا ہی چینج کر دی, اس کے لیے چینج کر دیا تاکہ اب اس کو یہ سزا نہ ملے, کیونکہ یہ اتنا بڑا آدمی ہے, اس کو کیسے یہ سزا دی جا سکتی, اور اس کے بدلے میں اس سے پیسے لے لیے, یا اسے کوئی عہدے لے لیے, یا اسے کوئی بڑی واہ واہ لے لی. تو یہ تو ظاہر قیمت, یہ ساری قیمت ہی ہے کہ انسان کسی سے کوئی عہدہ لے, یا بڑی کوئی دنیا کی کوئی بڑی دولت لے لے, یا کوئی اور کوئی بھی فائدہ لے لے. یہ سارے مفادات ثمن قلیل ہے, یہ تھوڑی قیمت ہے, اس لیے کہ دنیا کی ساری دولت بھی جمع کر لی جائے تو آخرت کے مقابلے میں تو تھوڑی ہی ہے نا, یہ تو بہت تھوڑی ہے. تم نے اس کے بدلے اللہ کی آیتوں کو بیچ دیا, خود ہی لکھ لکھ کے لوگوں کا آگے کہتے جا رہے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. آج دیکھیں مسلمانوں میں کیا ہے, مسلمانوں میں فتوے خود ہی لکھ دیتے ہیں, خود ہی فتوے بنا لیتے ہیں, اور پھر کہہ دیتے ہیں کہ ہاں بس یہ ظاہر قرآن میں تو نہیں وہ ہوتا, ظاہر قرآن کی بیس پہ تو نہیں ہوتا, خود ہی آیتوں کو مانا ادھر ادھر سے بدل کے ان کی بیس پہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ بس یعنی دین کی ہم بات آپ کو بتا رہے ہیں, اب اس کی بیس پہ من مانے فتوے لے لیتے ہیں. کیوں, تاکہ ان کی نظروں میں جچ جائیں, یہ ہمیں چھوڑ کے نہ چلے جائیں, یہ جو ہمارے فالوور ہیں, ہمارے فینز ہیں, یہ ہمیں چھوڑ کے اگر چلے گئے تو ہم پھر کدھر جائیں گے, ہماری واہ واہ کیا ہوگی, یہ جو میرا ہلکا احباب ہے اتنے لوگ مجھے سننے آتے ہیں, اگر میں نے ان کے خلاف کوئی بات کر دی یہ تو آئیں گے ہی نہیں. تو یہ بھی تھوڑی قیمت ہے جس کے لیے اللہ کی آیتوں کو بیچ دینا, یہ ناراض نہ ہو جائیں, اگر ان کے خلاف بات کی تو ناراض ہو جائیں گے, یہ کام تو سبھی کرتے ہیں, تو پھر یہ تو اس کو برداشت نہیں کریں گے تو یہ چلے جائیں گے, مجھے فیسیں کون دے گا, سب تھوڑی قیمت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ویل ہے ان کے لیے ویل, تو یہ ویل کا لفظ یہاں پہ آیا ہے. ویل کس کو کہتے ہیں, ایک تو اس کا سادہ معنی ہے ہلاکت, اس کے علاوہ زجاج کہتے ہیں کہ ویل ایک ایسی چیز ہے, ایک ایسا کلمہ ہے جو ہلاکت میں پڑنے والا کہا کرتا ہے, کہ جیسے کہتے ہیں نا حسرت ہے, افسوس ہے. اسی طرح ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے شدید عذاب. سعید ابن مسیب فرماتے ہیں کہ ویل جہنم میں ایک وادی ہے, اگر اس میں جہنم کے پہاڑ بھی جلائے جائیں تو وہ بھی ریت ہو جائیں, یعنی اتنی زیادہ اس کے اندر ٹیمپریچر ہے, اتنی ہیٹ ہے کہ پہاڑ بھی اس میں پگھل جائیں, ریزہ ریزہ ہو جائیں. یا فرمایا شدت حرارت سے بالکل پگھل کے پانی کی طرح بہ جائیں, اتنی زیادہ ہاٹ ہے وہ ویل جہنم میں وادی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل جہنم میں ایک وادی ہے کہ کافر اس میں 40 سال تک گرتا جائے گا تب بھی اس کی تہ تک نہیں پہنچے گا, اتنی خوفناک وادی ہے یہ. استغفر اللہ ربی, اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. مگر دیکھیں جب ہمارے لوگ بھی عام سادہ لوگ ہوتے نا تو وہ کیا کرتے ہیں, جب کوئی بات کرنے لگتے نا, آپ کو نہیں پتا یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے, ہاں یہ قرآن میں ہے, تو آپ نے کتنی دفعہ قرآن پڑھا, قرآن کبھی پڑھا ہے ہی نہیں. اب جیسے مثلاً کیوں کہہ دے قیامت کے قریب عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی اور مرد کم ہوں گے, اب وہ پتہ یہ قرآن میں لکھا ہوا, ہاں ہاں یہ قرآن میں ہے, اب یہ کہاں سے بات کہہ دی, وہ کہیں لکھا ہی نہیں ہوا, ایسے ہی بے دلیل کہہ دی. اب جب آپ نے کہہ دیا قرآن میں ہے تو اس کا مطلب آپ نے کیا کہا, کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے نا بات, قرآن میں تو نہیں نا لکھی ہوئی, ہاں بات صحیح ہے حدیث میں ہے لیکن قرآن میں تو نہیں ہے, یا اور کوئی بات اپنی طرف سے ہی بنا کے ایسے ہی کہہ دینا یہ قرآن میں ہے, सिर्फ इसलिए कि मुझे इससे कोई फायदा मिल जाए, मेरी बात ये समझ ले, मेरी बात ये सुन ले, तो ऐसे ही कहते हैं कुरान में। अब पता है वैल है, कोई नहीं ऐसे कह सकता। झूठी बात लगाना ना सख्त ये गुनाह का काम है, तो यूं ही ना कह दिया करें, ये कुरान में है, ये हदीस में है, ये कुरान में है, हदीस में। अब हमने अपनी बात, चूंकि लोगों के सामने जरा दूस भी जमानी होती है कि हमें बड़ा इल्म है, तो हम कुरान हदीस का नाम ले लेते हैं। और फिर से दोबारा वही बात कही गई, इसलिए कि इतनी शिद्दत है इसके अंदर कि दोबारा फरमाया गया फवैलुन लहुम मिम्मा कतबत अईदीहिम, बस हलाकत है उनके लिए जो लिखते हैं उनके हाथ, इनके हाथ जो लिखते हैं इसके ऊपर इनके लिए हलाकत है, इनके लिए वैल है, इनके लिए जहन्नुम की ये वादी है जिसमें इतना ज्यादा टेम्परेचर है। इसका मतलब लिखना जो है ना इंसान का, ये तो अल्लाह के कलाम को लिखते थे खुद से हाथों से अपनी तरफ से लिख के और फिर कहते थे अल्लाह की तरफ से है, लेकिन इससे ये भी एक बात पता चलती है कि जहां पे लिखना इंसान के लिए सदका जारिया बन सकता है। आप जो लिख रहे हैं नोट्स, आपको पता है ये एक एक लिखना जो खैर की बात, कुरान की तफसीर की बात आप लिख रहे हैं, ये स्याही भी तुलेगी अमालनामे में, ये आपका लिखना भी आपके लिए सदका जारिया है, अजर का बायस है, एक एक हर्फ के ऊपर नेकी लिखी जा रही है। इसी तरह अगर इंसान ने कोई हक के खिलाफ, दीन के खिलाफ, अल्लाह की बात के खिलाफ या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई बात लिखी है, तो वो हलाकत भी उसके लिए बन सकती है, उसके लिए वैल है जो उनके हाथ लिखते हैं। तो जो भी इंसान लिख रहा होता है ना, या जो भी आप में से लिखने के शौकीन है, वो इस आयत को जरूर नोट कर ले और जरूर देखें कि हम क्या लिखते हैं, हमारा लिखना भी कहीं ये ना हो कि अजाब का बायस बने। हम जो भी लिखें वो वही लिखें जो हमारे लिए भलाई का सामान बने। बाज लोग फहाशी की बातें लिखते हैं, बेहयाई की बातें लिखते हैं, कहते हैं आजकल ट्रेंड है, यही लोग पढ़ना चाहते हैं, यही लोग सुनना चाहते हैं, इसी की ज्यादा शोहरत होगी, इसी से मेरी किताब ज्यादा बिकेगी, या ये मेरा आर्टिकल है, या मैं अखबार में लिखती हूँ, या कहीं लिखती हूँ, तो यही लोग आजकल पसंद करते हैं, और दूसरी बातें लिखी कौन पढ़ेगा। तो फवैलुन लहुम मिम्मा कतबत अईदीहिम, बस हलाकत है उनके लिए। एक अमूमी माना अगर आप देखा जाए कि हाथ जो कुछ भी लिखते हैं तो वो उनके लिए हलाकत भी बन सकता है और उनके लिए नेकी भी बन सकता है। सोच समझ के इंसान लिखे, जो आप मजमून लिखें, रसाले में कहीं लिखें, अखबार में लिखें, अपने नोट्स में लिखें, अपनी किताब में लिखें, जो भी लिखें, कोई खत लिखें, कुछ भी लिख रही हैं, ध्यान से वाइलुन लहुम मिम्मा यकसिबून, और वर्स्ट पॉसिबल हलाकत है उनके लिए जो वो कमाते हैं इससे, इस लिखने से जो उन्होंने कमाई की है ना, उसके ऊपर भी, उस कमाई के ऊपर भी अजाब है। लिखने पे अजाब अलग है और कमाई के ऊपर अलग है। जो कमाई की, क्या कमाई की उनको, क्या हो सकता है कोई पैसे मिले हों या फायदे मिले हों, या मैंने आपको बताया जैसे इंसान कहता है कि मेरी शोहरत ना कम हो जाए, मेरी बातें सुनने वाला फिर कोई नहीं रहेगा, तो ये जो जो भी इन्होंने कमाई की इसके ऊपर भी इनके लिए हलाकत है। और वैल ये भी कहा जाता है, एक हदीस में ये भी आता है कि जहन्नुम में वो जगह है जिससे जहन्नुम भी पनाह मांगती है, इतनी बुरी जगह है वैल। वकालू, और वो कहते हैं लन तमस्सना नारु इल्ला अय्यामन मअदूदा, हमें तो आग छुए ही नहीं मगर गिनती के चंद दिन। ओ, हमें वैसे आग ने तो छूना है ही नहीं, हमने आग में तो जाना ही नहीं क्योंकि हम यहूदी हैं, हमारी नस्ल ऐसी है, और अगर बिल फर्ज अगर जाना पड़ ही गया, हम में से कोई बहुत ही गुनाहगार हुआ, तो फिर अगर गिनती के चंद दिन, वो गिनती के चंद दिन कौन से थे, ये लोग कहते थे कि या तो हम 40 डेज के लिए आग में जाएंगे जिस टाइम में हमने ये बछड़े की आइडल की पूजा की थी, और या फिर हम ज्यादा से ज्यादा 7 दिन का भी आता है कि ये लोग, इनका अकीदा ये था कि 7 दिन से ज्यादा हम आग में नहीं रहेंगे। आप सोच लें जब किसी को ये थॉट हो किसी के जहन में कि मेरी तो कोई पकड़ ही नहीं है, मैं जो मर्जी कर लूं, मुझे किसी चीज का डर ही नहीं, मुझे कोई सजा मिलनी ही नहीं है, तो बताएं जरा उसका अमल क्या होगा, फिर क्या हाल होगा, खुद बताएं। और इंसान को खुली छुट्टी ही मिल जाए, हमने तो जाना ही नहीं, हमें तो कुछ को पकड़ होनी ही नहीं, सीधे हमने डायरेक्ट जन्नत में ही जाना है, तो वो अपने अमल को कभी सही करेगा? हाँ, कोई कुर्बानी देगा? कोई दीन की जो अहकामात है उनको पर चलने के लिए वो अपने ऊपर कोई पाबंदी लगाएगा, कोई रिस्ट्रिक्शंस बर्दाश्त करेगा? कभी भी नहीं करेगा। तो वो लोग ये कहते थे मन घड़त, ये भी उनकी अमानी थी ना, खुद ही वो विशफुल थिंकिंग है। हालांकि अल्लाह ताला ने तो नहीं है फरमाया कुल अत्तखज तुम इंदल्लाह अहदा, अल्लाह ताला ने खुद ही इसका जवाब दिया कि क्या तुमने अल्लाह से कोई वादा लिया हुआ, इस चीज का कोई गारंटी ली हुई है कि तुम इससे ज्यादा दिन नहीं जाओगे और तुम्हें आग ही नहीं छुएगी? फलन युखलिफ अल्लाह अहदा, और अल्लाह अपने वादे के खिलाफ ही नहीं करेगा, हमने तो भाई गारंटी ले ली है। अम तकुनूना अल्लाह मा ला तअलमून, या तुम अल्लाह के ऊपर वो बातें कहते हो जो जिसका तुम्हें इल्म ही नहीं है, खुद ही अपनी तरफ से बना ली है? ये बताओ तुमने कोई गारंटी ली है या फिर ऐसे ही तुमने बना ली है बातें अल्लाह ताला के ऊपर के वो हमने तो आग में जाना ही नहीं? अच्छा, यही चीज को बेआईनी ही इसी तरह आप एग्जैक्टली मुसलमानों के ऊपर रख के देखें। आज मुसलमानों का भी तो यही कॉन्सेप्ट है, हम जी फलां की नस्ल में से हैं, वो हमारे तो बाओ गद्दी नशीन थे, हम तो सैयद हैं, हम तो फलां का दामन थाम लेंगे, हमने तो हमें तो फलाने ने पार करा देना है, हम तो फलां फिरके से हैं, हमें तो कुछ होना ही नहीं है, हमने तो आग में जाना ही नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जन्नत में जाना ही नहीं जब तक हमें लेके ना जाए, तो उन्होंने जाना ही नहीं है, इसलिए वो हमें लेके ही जाएंगे साथ। आखिर हम जो भी कुछ हैं लेकिन हैं तो उन्हीं के उम्मती ना, तो बस वो हम उनके उम्मती हैं, तो बस फिर अब हमें किस चीज का डर? तो जब दिल में ये यकीन हो कि मेरी तो कुछ मसला ही नहीं, मेरा वहां पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं, मैंने तो वहां पे बच ही जाना है, तो कौन होगा? कोई कोई भी नहीं होगा फिर तो। कोई क्यों अपने आप को एक रिस्ट्रिक्शंस में और एक कैद खाने में, ये दुनिया तो मोमिन के लिए कैद खाना है ना, फिर कैद खाने में क्यों डालेगा? हर एक यहाँ पे जन्नत बनाने की कोशिश करेगा, आजाद हो जाएगा, फिर किसी के गुलाम होने की अल्लाह के हुक्मों को मानने की जरूरत ही क्या है? मौज करो, मस्ती करो, जो मर्जी करो। तो देख ले वही चीज जो उनमें थी वही आज हमारे अंदर है। वो खुद को नबियों की औलाद समझ के ये सोचते थे, हम उम्मती समझ के ये सोचते हैं, तो क्या हमें कोई गारंटी है लिखी हुई? ये बताएं, हमने कहां से गारंटियां ये ली हैं? कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अल्लाह ताला तो फरमाते कोई दलील है तो लेकर आओ, है तू बुरहानकुम, लाओ अगर तुम सच्चे हो। ये हमारी भी अमानी है, ये बस हमें तो वहां पे कुछ भी नहीं होना, हमने तो बस चंद साल अगर रहे भी तो चंद साल बस आग में चंद दिन रहेंगे। और बाज लोग तो बड़ी जुर्रत के साथ कहते हैं ठीक है, जहां पे और लोग जाएंगे वहां पे हम भी चले जाएंगे, थोड़े दिन आग में रहेंगे उसके बाद तो निकल ही जाएंगे ना। अल्लाहु अकबर, ये भी कोई अहद लिया हुआ आपने अल्लाह से? अल्लाह ताला ने वादा किया है कि एक तो आग में जाना ही नहीं है, या फिर किसके पास गारंटी है बताएं? किसी के पास नहीं है, तो फिर खुद ही मुंह से वो बातें कहते जा रहे हो अल्लाह के ऊपर जो आप जानते ही नहीं हो। क्या किसी को अल्लाह ताला ने गारंटी लिख के दी हुई है? किस किस के पास है वो अहदनामा? कोई प्रॉमिसेस हैं? फिर कहां से ये ख्याली बातें लेकर आए हुए हो? अल्लाहु अकबर, अगर हमें ये पता हो ना और ये यकीन हो कि वहां पे हम नहीं जानते क्या हो, हमें बस यहाँ पे अमल करना है और मेहनत करनी है, हमें नहीं पता हमारा अंजाम क्या है, तो हम फिक्रमंद रहें, हम तौबा इस्तग़फ़ार करते रहें, हम रोते रहें अपनी खताओं पे, हम नेकियों में दौड़ें, हम वक्त को जाया ना करेंगे, फिर हम तो हर वक्त परेशान रहेंगे कि पता नहीं कितनी जिंदगी रह गई, मुझे आगे अल्लाह को जवाब देना है, पता नहीं वहां पे मेरा क्या मामला होता है, फिर तो हमें ये फिक्र रहेगी। जिसको ये है कि भाई वहां पे मैंने बच ही जाना है, वो फिर क्यों फिक्र करे? उसको क्या जरूरत है रातों को उठ उठ के अल्लाह के सामने खड़े होने की? उसको क्या जरूरत है माफिया मांगने की? वो बख्शा बख्शा है, वो तो उसने दामन थाम देना और वहां पे पार हो जाना। बला मन कसब सैयतन वहातत बिही खतियतुहु फौलाइका असहाबुन नार, याद रखो तुम ये कहते हो कि हमें आग ने छूना नहीं है, हमें आग ने छुआ भी तो इतने दिन है। याद रखो क्यों नहीं, जिसने भी कमाई की बुराई को कमाया, जिसने भी, चाहे वो यहूदी है, चाहे ईसाई है, चाहे मुसलमान है, कोई भी है। देखें यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं कि मुसलमानों को नहीं होगा, नहीं, जिसने भी बुराई को कमाया और उसके बाद क्या हुआ, वह अहातत भी खतीअतुहु, और उसकी बुराई ने उसको घेर लिया, उसकी खता ने उसको घेर लिया, यानी किसी ने गुनाह किया और गुनाह करके फिर उसके बाद ये नहीं आया उसको कि भाई अब मैं इस गुनाह को छोड़ दूं, वो गुनाह में डूब गया, अहातत हुआ ना, गुनाह ने उसको सराउंड कर लिया, एनसर्कल कर लिया, वो जकड़ा गया अपनी उस खता में, उसने कभी उससे निकलने की कोशिश नहीं की, समझाइए ना, कभी उसके ऊपर उसको शर्मिंदगी हुई, ना निदामत हुई, ना ये ख्याल आया कि नहीं मैंने ये, मैं गुनाह कर रही हूं, मुझे इससे निकलना है, क्यों मैं, एक तो होता है ना भाई, देखिए गलती हो गई हमसे, साहब से, सबसे हमसे गलतियां होती हैं, अब गलती हुई बाद में ख्याल आया इतना पछताए, अल्लाह तौबा भी की, अल्लाह हमें बचा के रखना, आइंदा हमसे ये गुनाह हो गया, वो सबसे होते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन एक वो भी गुनाह होता है कि इंसान गुनाह करता है और फिर उससे उसके अंदर एक दफा किया, दो दफा किया, 10 दफा किया, फिर करता ही चला गया, ना उसे जान छुड़ाने की कोशिश करता है, बल्कि उसको जस्टिफाई करता है, कोई बात नहीं है, मैं इतने और अच्छे अच्छे भी को तो काम करती हूं, क्या हो गया अगर मैंने ये एक काम कर, सय्यातन, देखा मैंने आपको बताया था कॉमन नाउन जब बताया था, इसम नकिरा, एक बुराई के लिए, एक बदी, एक गुना, कोई सगीरा नहीं, सगीरा गुनाह तो छोटे छोटे गुनाह अल्लाह ताला वैसे भी माफ कर देते हैं, नेकियों से भी मिट जाते हैं, कोई कबीरा गुनाह किसी ने किया, फिर वो करता ही चला गया और उसको कभी ख्याल नहीं आया कि मैं इससे निकलूं, और बल्कि वो ये सोचता है कि ये हराम कर भी लिया है तो क्या हो गया, लोग इतने करते हैं, मैं अगर एक कर लूं, कर रहा हूं, मसलन कोई जिना करता है या कोई और भी, कोई भी ऐसा, अब मैं नाम नहीं लूंगी, आप खुद जानते हैं, इंसान खुद ही फैसला कर ले हलाल हराम का, कि ठीक है भाई मैं इतने अच्छे अच्छे काम भी करती हूँ, नमाज भी तो पढ़ती हूँ, रोजा भी, अगर मैंने ये एक हराम का काम कर भी दिया तो कौन सी ऐसी बुराई हो गई, क्यामत आ गई, ठीक है ना। अच्छा अब इसी के अंदर वो करते 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 कभी उसको शर्मिंदगी नहीं हुई, एहसास नहीं हुआ, तौबा नहीं की, एक दिन उसको मौत आ जाती है, तो क्या होता है, फाउलाइका असहाबुन्नार, ये एक गुनाह भी उसको साथी बना देगा आग का, हम फीहा खालिदून, उसमें हमेशा रहेंगे, अल्लाह रहम फरमाए, एक गुनाह है, लेकिन देखें जैसे मसलन कुफर है, शिर्क है, या कोई कबीरा गुनाह है, अगर इंसान ढीठ बन के कबीरा गुनाह को भी करता रहता है और उसके बाद इसमें उसको बुराई का एहसास भी नहीं रहता, उसी में डूबा रहता है और मौत आ जाती है, तौबा नहीं करता, तो ये उसका अंजाम है, क्योंकि तो देखें गुनाहों के भी असरात होते हैं, याद रखिए गुनाहों का असर होता है, गुनाह इंसान को घेर लेते हैं, फिर इंसान एक विशेष सर्कल में फंस जाता है, एक गुनाह से, कहते हैं ना एक झूठ 100 झूठ का दरवाजे खोल देता है, तो एक गुनाह से फिर आगे इंसान गुनाह करता ही जाता है, करता ही जाता है, वो एक सर्कल में फंस जाता है, फिर डूबता जाता है, जैसे एक कदम आपने उठाया दलदल में रख दिया, वो पहला कदम तो आपने अपनी मर्जी से रखा ही था, उसके बाद क्या है, बस डूबते ही चले गए। तो अब क्या इंसान इससे निकल सकता है, इस सर्कल से, या इस जब बुराई अहाता कर ले, तो इसकी भी वही बात है कि इंसान सबसे पहले तो तौबा करे, तौबा करनी चाहिए, फिर नंबर टू इसकी तलाफी करनी चाहिए, फौरन नेकी का कोई काम करने की कोशिश करे, नंबर थ्री अहद करे कि मैंने आइंदा कभी नहीं करना, ये नहीं कि ढीठों की तरह करते ही चले जा रहे हैं, ना, तो अहद करे कि मैंने नहीं करना, बाद में बेशक उसकी तौबा फिर गलती से दोबारा हो जाता है, फिर दोबारा हो जाता है, वो गलती से होना अलग बात है, लेकिन तौबा जरूर करें, वादा जरूर करें, चाहे वादा टूट भी जाता है फिर वादा कर लें कि मैंने नहीं करना। नंबर फोर ये अपनी सोहबतों को सही करें, सोहबत जब आपकी सही होगी ना, तो फिर आप देखेंगे कि आपके लिए इस बुराई की कराहत आपके दिल में आएगी, वरना जब इंसान की कंपनी ऐसी होती है ना, तो वो कंपनी इंसान को बुराई में खींच के ले जाती है, और वो उसी में फंस जाता है, यानी ये अहातत भी खतिया तो वो है कि वो उसी के अंदर फंसा हुआ है, डूबा हुआ है, गर्क है। अब वो बुराई उसके ऊपर गालिब आ गई है, वो फिर नेकियों को भी खा लेती है, अब नेकी करने का ख्याल ही नहीं आता। तो वो कंपनी जब इंसान की ऐसी होती है ना, तो गुनाह की या बुराई की इंसान के अंदर से कराहत खत्म हो जाती है। तो अब जैसे आप क्लास में होते हैं तो आपको किसी कोई गुनाह बहुत बड़ा लगता है, उसकी कराहत आती है, क्लास से निकल जाते हैं, अपनी कंपनी में जाते हैं, अगर आपकी कंपनी कोई ऐसे लोगों की है जो कि मतलब सही नहीं है, तो फिर क्या होता है, वो कहते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम ऐसे ही बस कुरान पढ़ के बहुत ही मुलानी हो गई हो, छोड़ो इन बातों को, चलो फिर वो वही उन्हीं कामों में पड़ जाते हैं। देखिए इंसान का एक गुनाह भी उसको जहन्नुम तक ले जा सकता है। والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون। वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, ये हैं जन्नत वाले। ईमान देखें मुकम्मल किससे होता है, साले अमल से। जन्नत में जाने के लिए सिर्फ ईमान काफी नहीं है, जब तक साले अमल ना हो, साथ ही साले अमल है। और हम कहते हैं नहीं हमने अमल नहीं करना, तो फिर कुरान में तो यह है कि सिर्फ ईमान, खाली ईमान के साथ नहीं जा सकते जन्नत में। उलाइका असहाबुल जन्ना, ये लोग हैं जन्नत वाले, हम फीहा खालिदून, ये भी जन्नत में हमेशा रहेंगे। अल्लाह ताला हमें इनमें से करे जो ईमान और साले अमल करने वाले हैं, और अल्लाह ताला हमें गुनाह और गुनाहों के घेरे से, खताओं के घेरे से, अहाते से महफूज रखे। अल्लाह ताला हमें उम्मी लोगों में शामिल ना फरमाना, या अल्लाह ताला हमें उनमें शामिल फरमाना जो हामिल कुरान हो, हामिल किताब हो, और अल्लाह ताला हमारे अमल में लेकर आना इन आयात को। या अल्लाह हमारे दिलों की सख्ती से हमें महफूज रखना, अल्लाह हमारे दिल कहीं ऐसे सख्त ना हो जाए कि पत्थर या पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो गए। अल्लाह हमारे दिलों को ऐसा नरम कर दे जो तेरी तरफ रुजू करने वाले हो। سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين। تلاوة سنية إن شاء الله شروع سے।
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.